नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान में 700 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पटना, सुपौल, अररिया, शिवहर, सिवान और मुजफ्फरपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन तक तापमान में और होगी गिरावट। और विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 पुरुष प्लेट ग्रुप में बिहार ने त्रिपुरा पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज सिवान में 700 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और ब्योरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात सिवान को देने जा रहे हैं, जिसमें कन्या आवासीय आवास का भी उद्घाटन वो करने जा रहे हैं, जिसमें 520 लड़कियां पढ़ा सकती हैं और अपना पढ़ाई भी कर सकती हैं। साथ ही साथ रोड के चौड़ीकरण और अन्य विकास योजनाओं को लेकर काम करेंगे। वहीं जीविका दीदियों के साथ भी मिलकर उनकी परेशानियों को जानेंगे। और शिलान्यास के बाद सिवान के समाहरणालय के समक्ष स्थित अम्बेडकर भवन के सभागार में वो अधिकारियों के साथ और स्थानीय नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के इस आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। वहीं जिला प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में लगा हुआ है। सिवान से आकाश।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण 16 से 29 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वे खगड़िया, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा समेत 9 जिलों में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में संबंधित प्रमंडलों के आयुक्त और जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी पंचायतों में दीदी की लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने वैशाली जिले में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान नगवा गांव में दीदी की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री से सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की मांग की। इसी मांग के आलोक में मुख्यमंत्री श्री कुमार ने हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने का निर्देश दिया। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव 15 जनवरी से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के 7वें चरण की शुरुआत करेंगे। 22 जनवरी तक चलने वाले इस यात्रा कार्यक्रम में वे गया, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस बीच श्री यादव आज कैमूर जिले में संवाद यात्रा के तहत कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात करेंगे। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह भूकंप के हल्के से तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दीपांकर सिंह ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.1 थी।
अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मेजर कैटेगरी का अर्थक्वेक जीजांग सिटी चाइना तिब्बत में आया है। इसका ओरिजिन टाइम 6:35:18 है भारतीय समय अनुसार। लैट लॉन्ग 28.86 और 87.51 है। मैग्नीट्यूड 7.1, डेप्थ 10 किलोमीटर।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुजफ्फरपुर में सुबह भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए। वहीं सुपौल, सिवान, अररिया, शिवहर समेत अन्य जिलों में भी कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में बिना इजाजत धरना देने के मामले में गिरफ्तार जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर को अदालत ने बिना शर्त रिहा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आरती उपाध्याय ने पहले उन्हें सशर्त जमानत दी थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से मना कर दिया था। इसके बाद देर शाम अदालत ने उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अनशन के लिए नए स्थान की घोषणा आज की जाएगी। गोपालगंज के गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा। अभयारण्य बनने के बाद नदी में इन घड़ियालों की निगरानी और संरक्षण किया जाएगा। ICUN के संकटग्रस्त जीव में घड़ियाल लाल सूची में शामिल है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की टीम अभयारण्य की कार्ययोजना के लिए फरवरी महीने में जिले का दौरा करेगी। गोपालगंज के वन पदाधिकारी मेघना यादव ने बताया कि अभयारण्य बनने से घड़ियाल का संरक्षण संवर्धन के साथ जिले की अलग पहचान बनेगी। इससे पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के अनुसार गंडक नदी में लगभग 1200 से 1500 घड़ियाल मौजूद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में UGC विनियम 2025 का मसौदा जारी किया। ये मसौदा उच्च शिक्षा में सुधार, समावेशिता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। ये मसौदा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों से संबंधित है। मसौदे के अनुसार उम्मीदवार UGC नेट या PhD विषयों से संबंधित शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उन्होंने स्नातक किसी अन्य विषय में किया हो। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि यह मसौदा उच्च शिक्षा के हर पहलू में सुधार, नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाएंगे। उन्होंने कहा कि मसौदा विनियम पर लोगों के सुझाव और परामर्श आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी राज्यों से खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। ये मिशन आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के भारत के दृष्टिकोण की आधारशिला है। इसका लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम ऑयल के बागानों के अंतर्गत लाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। बर्फीली पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, गया, पटना, दरभंगा, किशनगंज समेत अधिकतर जिलों में अगले 3 घंटों के दौरान बहुत घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।
मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ स्थानों में बहुत घना कुहासा एवं शेष भाग में घना कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है।
इस बीच आज सुबह राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम और सर्द हो गया है। अत्यधिक ठंड और दृश्यता कम होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पटना समेत कई स्थानों पर कल दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से आंशिक राहत मिली है। साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर घने कोहरे के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। ठंड के मौसम में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बंसल ने कहा कि ठंड में रोगियों को समय पर दवा लेनी चाहिए और तरल पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए।
सर्दी से बचें। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो अपने हाथों को मलें ताकि उन्हें गर्म रखा जा सके। आप उन्हें हल्का सेक भी सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयां जरूर चेक करते रहें। समुचित मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, खासतौर से वार्म जो गर्म पदार्थ हैं जैसे चाय है या गर्म पानी है। इसके अलावा दवाएं समय पर लीजिए, जहां तक संभव हो बिल्कुल सुबह सुबह या बिल्कुल देर रात में जबकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, उस समय में यदि बाहर ना जाया जाए तो अधिक यूजफुल रहता है।
विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 पुरुष प्लेट ग्रुप में बिहार ने त्रिपुरा पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल मुकाबले में बिहार ने त्रिपुरा को 133 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया है। पहली पारी में बिहार ने 97.02 ओवर में 289 रनों का स्कोर बनाया। इस दौरान सार्थक झा ने शानदार 90 रन और मोहित कुमार ने नाबाद 63 रन बनाए। प्रतियोगिता में बिहार के कप्तान प्रीतम राज को मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। हॉकी इंडिया ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार को मान्यता दे दी है। इस संबंध में हॉकी इंडिया ने पत्र जारी किया है। इसके अनुसार राणा प्रताप सिंह को हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार का सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्री श्रवण कुमार को एसोसिएशन का अध्यक्ष और राकेश कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मध्यरात्रि में तख्त श्री हरमिंदर सिंह साहिब में दशमेश गुरु के जन्मोत्सव पर आकर्षक आतिशबाजी की गई। प्रकाशोत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान शबद कीर्तन और गुरुवाणी से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरमिंदर साहिब में मत्था टेका और प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। नई दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार के 3 कलाकार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इनमें 2 पद्मश्री और 1 नेशनल अवार्डी शामिल है। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प मधुबनी के सहायक निदेशक बीके झा ने बताया कि जिले के पेपरमेशी कला में दक्ष पद्मश्री सुभद्रा देवी, मिथिला पेंटिंग की कलाकार शांति देवी और महानवा देवी समारोह में शामिल होंगी। वहीं बेतिया की जानवी कुमारी भी गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, वैशाली जिले में बनेगा बड़ा औद्योगिक पार्क। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पर्यटन वीजा पर विदेश गए 374 बिहारी समय अवधि पूरी होने के बावजूद नहीं लौटे। दैनिक भास्कर लिखता है, प्रशांत किशोर गिरफ्तार, सशर्त जमानत से इनकार, कोर्ट ने शर्त हटाई तब माने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान में 700 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पटना, सुपौल, अररिया, शिवहर, सिवान और मुजफ्फरपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 दिन तक तापमान में और होगी गिरावट। और विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 पुरुष प्लेट ग्रुप में बिहार ने त्रिपुरा पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।